Gopi Janavallava Nirvara Dhari Jaya Gopi Janavallava Jaya Yashodhanandana Bhaja Janaranjana Ramnathiravanachari Ramnathiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girvara Dhari Jaya Jaya Yashodhanandana Bhaja Janaranjana Ramnathi Ravanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
हरिनाम संकीर्तन की हृदय गौर पे मनंदे
Divine Kesa Vaicharana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Sri Radha Girdhari Bhagwan Ki Jagannath Baldev Subhadra Ji Ki Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेनुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः।
श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय एक श्लोक क्रमांक 11।
चेतन निर्विध्यमानानां एतन् निर्विध्यमानानां इच्छताम कुतो भयम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन् निर्विध्यमानानां इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्।
एक प्रभु जी और एक माता जी आवृत्ति करेंगे।
एतन् रूपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम् एतान् निर्विद्यमानानाम् इष्टकामसुतो भयम् योगिनां रूपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम् ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
प्रति रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है। यहाँ पर आपके सामने जो श्लोक है सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ सबसे पहला उपदेश है। परीक्षित महाराज की जो जिज्ञासाएं थी तो उस प्रसंग को हम संक्षिप्त में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं कि महाराज परीक्षित जब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर अपने महल में वापस आ गए तो जैसे ही परीक्षित महाराज अपने महल में पहुंचे तो तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ, मन में पश्चाताप करने लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। एक ऋषि जो भगवान के ध्यान में मग्न थे और ऐसे ऋषि के गले में मैंने
सर्प डाल दिया। तब सोच रहे कि इतना बड़ा अपराध किया है और इस अपराध का दंड भी मुझे अवश्य मिलना चाहिए। कहते कि इस अपराध के फलस्वरूप मेरा सारा राज्य नष्ट हो जाए, मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, राज्य का समृद्ध कोष सब नष्ट हो जाए। इतनी बड़ी सजा मिले कि मेरे जैसा दुष्ट कभी संतों का, साधुओं का, देवताओं का अपराध न करे। यहीं पर से परीक्षित महाराज की महानता मालूम होती है और प्रायः सज्जनों का यही स्वभाव भी रहता है। गलती तो सब करते हैं। भागवत में लिखा है कि परम पुरुष भगवान नारायण को बात करके इस संसार में कौन ऐसा जीव है जिसने गलती न की हो। सभी देवता हो, ऋषि मुनि हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, गलती सबसे होती है। लेकिन जो महात्मा है, जो सज्जन है, वे लोग अपनी गलती समझ जाते हैं, या तो खुद अपने आप से या तो दूसरों के कहने से अपनी गलती को समझकर उसको सुधार लेते हैं। लेकिन जो दुर्जन है, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, वह अपनी गलती न तो खुद समझते हैं और न तो दूसरों के कहने से भी समझते हैं और सुधरते भी नहीं है। गलती ही नहीं मानते तो सुधरने का प्रयास ही क्या करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज को अपनी भूल खुद समझ में आ गई और प्रार्थना कर रहे कि मुझे मेरे अपराध का इतना बड़ा दंड मिले कि जीवन में कभी ऐसा अपराध करने का साहस न हो। इस तरह सोच रहे थे परीक्षित जी और तब तक शमिक ऋषि के शिष्य वहां पर आए और कहते कि राजन, आपके पास 7 दिनों का समय है। ऋषि कुमार के द्वारा आपको शाप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश देने से आपकी मृत्यु होगी। और इतना सुनते ही परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, भगवान का आभार, भगवान की कृपा का एहसास करने लगे। मन में सोचते हैं कि मैं कितने समय से इस राज्य के भोगों में, संसार के भोगों में, संसार के विषयों में पड़ा था, लेकिन आज भगवान कृष्ण ने कृपा करके मुझे इस संसार के विषय रूपी कूप से बाहर निकाला। इस संसार के विषयों से मुझे वैराग्य नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान कृष्ण ने इस ब्राह्मण कुमार के शाप को निमित्त बनाकर मुझे इस संसार से वैराग्य दिलाया है। ऐसा सोचकर सब कुछ छोड़कर तुरंत ही अपने समृद्धि से भरे हुए राज्य को त्याग कर निकल गए। और जब निकले राज्य से तो मन में जरा सा भी दुख नहीं था। सूत जी कहते हैं, अथो विहाय इमं च लोकम विमर्शितो हेयतयास पुरस्तात। परीक्षित महाराज को जरा भी दुख नहीं था, क्यों? क्योंकि वह इहलोक और परलोक की सब संपत्ति को पहले से ही तुच्छ समझते थे। इमं च अमुं च, इहलोक और परलोक की सभी संपत्ति को पुरस्तात हेयतया, पहले से ही तुच्छ हेय समझते थे। अब प्रश्न होता है कि परीक्षित महाराज के पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी कि जिसके आगे उसको त्रिलोक की संपत्ति तुच्छ लगती थी। वैसे परीक्षित जी के पास इस लोक की तो समग्र संपत्ति थी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे। हरे कृष्णा, हरे, सभी लोग भक्त थोड़े थोड़ा आगे आ जाइए। हरे राम, हरे राम, सिर्फ हिलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे आना है। हरे कृष्णा 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 हरे। सुत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज सिंहासन पर बैठकर जिस पीठिका के ऊपर अपने चरण रखते थे, उस पीठिका के ऊपर संसार भर के जितने राजा थे वह सब अपना मुगट रखकर, अपना मस्तक रखकर, अपना अपना कर राजा को भेंट अर्पण करते थे। इतना बड़ा जिसके पास साम्राज्य था, समग्र भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट, चिहलोक की तो सब संपत्ति परीक्षित जी की ही थी, और परलोक स्वर्ग इत्यादि में क्या संपत्ति है, क्या सुख है, क्या भोग है, उसके बारे में उसने बारंबार सुना था, और फिर भी इतनी सारी संपत्ति, इहलोक और परलोक की सारी संपत्ति को तुच्छ है समझते थे। तो क्या उसके पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी जिसके कारण वह इतनी बड़ी संपत्ति को, त्रिलोक की संपत्ति को तुच्छ समझते थे? जैसे वो काशी से आए हुए ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास गए और जाकर कहा कि हे महाराज, मैं भगवान काशी विश्वनाथ के आदेश से आपके पास आया हूँ, मेरी बेटी का विवाह है तो उसके लिए मुझे थोड़ा धन चाहिए, और शिव जी ने कहा है कि आप आपके पास आने से मुझे वो धन मिल जाएगा। सनातन गोस्वामी मन में सोच रहे कि मेरे पास तो एक कोपिन के सिवा और कुछ है नहीं, ब्रजवासियों के पास से मधुकरी करके मैं अपना भोजन कर रहा हूँ, और धन संपत्ति, और फिर अचानक मगज में आया तो कहते कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो कुछ धन संपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते समय मैंने एक दिन देखा था कि अमुक स्थान पर एक पारस मणि पड़ा है, तो आप जाकर देखिए वहां पर, शायद आपके भाग्य में हो तो आपको मिल जाए। तो ब्राह्मण वहां से उठकर गए और जिस स्थान को कहा था उस स्थान पर गए, तो सचमुच उसको पारस मणि और दिव्य मणि मिला। तो एकदम आनंद में प्रसन्नता पूर्वक मणि लेकर चलने लगे जाने के लिए, लेकिन जाते जाते मन में सोचा उस महात्मा के पास कोई ऐसी संपत्ति है कि जिसके कारण उसको यह पारस मणि जैसा दिव्य पत्थर, जो लोहे को छूने से सोना बना देता है, ऐसा पत्थर भी उसको धूल जैसा दिख रहा है, उसका अर्थ है कि उसके पास इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है। तो तुरंत वो वापस आए सनातन गोस्वामी के पास और कहा कि महाराज, क्या आपके पास इससे भी कोई श्रेष्ठ संपत्ति है? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण देव, इससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ संपत्ति मेरे पास है, तो तब आप वो मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहते कि उसको प्राप्त करने के लिए पहले आपको यह पारस मणि को फेंकना पड़ेगा, तब वह संपत्ति प्राप्त होगी। तो तुरंत वो ब्राह्मण वहां से बाहर जाकर उस पारस मणि को गंगा यमुना जी में फेंक दिया और आए। जैसे वापस आए तो सनातन गोस्वामी ने एक माला जोली हाथ में ली और पकड़ा दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम।
कहते कि ब्राह्मण देव, लीजिए यही वो मणि है जिसके पास ये पारस मणि धूल के समान है। तो वैसे ही यहाँ पर सोचने की बात है कि परीक्षित महाराज के पास ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसके चलते उसको तीनों लोक का वैभव, तीनों लोक की संपत्ति एकदम तुच्छ लग रही थी। तब कहते कि उसके पास वह संपत्ति थी कृष्णांध्री सेवाम अधिमन्यमान, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही वो श्रेष्ठ मानते थे, और उसी संपत्ति के आगे उसको त्रिलोक का राज्य धूल के समान दिख रहा था। अमरीश महाराज के बारे में भी यही आया है, तेनेयम लोष्टवत स्मृत, भगवान कृष्ण की भक्ति में अपनी सभी इंद्रियों को लगा रखा था और उसी के कारण उसको यह त्रिलोक लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान दिख रहा था। वैसे ही परीक्षित महाराज बिना किसी आसक्ति को, आसक्ति से सब कुछ छोड़कर सीधे गंगा तट पर शुकाल में चले गए, और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो ये समाचार पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल गए थे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों को साथ में लेकर वहां पर आने लगे। और कोई कोई महात्मा तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तभी से वहां पर आसन जमा कर बैठ गए थे, क्योंकि जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तब ब्राह्मणों ने उसका भविष्य कहा था और कहा था कि इस बालक की मृत्यु तक्षक के वंश देने से होगी, लेकिन अंत समय में शुकदेव जी के मुख से भागवत कथा सुनकर इसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो तभी से ये लोग जानते थे कि यहाँ पर भागवत कथा होगी, तो उस समय से आकर अपना आसन रखकर बैठ गए थे जगह रोककर। तो परीक्षित जी वहां पर पहुंचे और उन सब ऋषि मुनियों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ऋषियों, मोपयातम प्रतियंतु विप्रा, अब मैं आप लोगों की शरण में हूँ। गंगा से देवी पास में ही भगवती भागीरथी गंगा जी बह रही है, ध्रुत चित्त मीशे, और मैंने अपने चित्त में अपने मन में अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को धारण कर लिया है, इसलिए अब उस तक्षक के दंशने से मुझे कोई भय नहीं है। द्विजोप सृष्ट कुहक तक्षको वा दशत्यलं गायत विष्णु गाथा, कहते कि अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है क्योंकि आप लोगों की शरण में हूँ, गंगा जी का सानिध्य है और मैंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को बिठा लिया है, तो इसलिए भले ही तक्षक आकर मुझे दंश दे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस आप लोग गायत्यलं विष्णु गाथा भगवान कृष्ण की कथा मुझे सुनाए। हे ऋषियों, आज सभी को चरणों में मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कर्म के अनुसार मेरा जन्म जिस किसी भी योनि में हो, लेकिन जहां पर भी मैं जाऊं पुनश्च भूयात भगवत्य अनंते रति, जिस योनि में मैं जाऊं वहां पर मुझे भगवान अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, और प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, और भगवान कृष्ण के जो आश्रित भक्त है उसका मुझे संग मिलता रहे। मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, वैष्णवों के साथ मेरी मित्रता बनी रहे और महापुरुषों के चरणों में मेरा मस्तक हमेशा झुका रहे। परीक्षित महाराज कितनी सुंदर उन ब्राह्मण उन ऋषियों की चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कर्म के अनुसार मुझे कौन सा भी देह धारण करना पड़े, लेकिन जहां पर भी जाऊं भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, उसके भक्तों का मुझे संग मिलता रहे, वैष्णवों के साथ मेरी मित्रता हो और ब्राह्मणों महापुरुषों के चरणों में मेरा यह मस्तक हमेशा झुका हुआ रहे। और इस बात को सुनकर आकाश में जो देवता लोग खड़े थे वह सब परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे, और उस सभा में जितने भी ऋषि मुनि थे सब साधु साधु कहते हुए परीक्षित जी की प्रशंसा करने लगे। और परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में कि भगवान कृष्ण की कथा सुनाए, तो सब चर्चा कर रहे थे कौन सुनाए, और तब तक वहां पर तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया धामटमानो यनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो वित्तेस्त बालेरवधूत वेश। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, और उसी समय भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पर आए, और कैसे थे क्यों आए तो यदृच्छ या गामत मानो, जंगल में और गांव में विचरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहां पर गंगा तट पर पहुंच गए। और कैसे थे तो कि अनपेक्ष निजलाभ तुष्टो, वो तो अपने ही अंदर आनंद में अपने से आनंद में पूर्ण थे, इसको किसी के पास कुछ आशा नहीं थी, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, अनपेक्ष वृत्तेश्च बालेर अवधूत वेश, उसका वेश कैसा था अवधूत जैसा, अर्थात बिल्कुल दिगंबर नग्न अवस्था में थे। और वृत्तेश्च बालेर, सुखदेव जी जब वहां पर पधारे गंगा तट पर तो अनेक बालकों ने उसको घेर रखा था। जब सुखदेव जी हस्तिनापुर से निकले तो उसका स्वरूप देखकर हस्तिनापुर के लड़के और लड़कियां उसको पागल समझकर उसके पीछे लग गए, पागल पागल कहते हुए। कोई कोई उसके ऊपर धूल फेंकता था, कोई पत्थर से मारते थे, कोई पैरों से लात मारते थे। सब मस्करी करते हुए सुखदेव जी की सब ओर से जा रहे थे उसके साथ में। लेकिन सुखदेव जी को क्या, वो तो आत्माराम पुरुष, शरीर के साथ उसका कुछ संबंध ही नहीं है। बस भागवत के श्लोकों को मंद मंद स्वर में गाते हुए अपनी धुन में अपनी मस्ती में चले जा रहे थे और ये लोग सब उसकी मस्करी कर रहे थे, जो हस्तिनापुर के सब बच्चे लड़कियां थी वो सब। ऐसे करते करते सुखदेव जी जब गंगा तट पर पहुंचे तो वृतेश्च बालेर, ये सब बालकों भी, ये सब लड़के और लड़कियां उसके साथ वहां पर पहुंचे। और सुखदेव जी को देखकर वहां पे सभा में जितने भी ऋषि मुनि थे सब अपने अपने स्थान से अचानक खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। और इस दृश्य को देखा तब वो लोग, अरे राम राम राम, हम इसको पागल समझ रहे थे, तो बहुत बड़े महात्मा है, तो भय के कारण वहां से भाग गए। तो वृतेश से बालर आए तब तो बालकों के साथ आए थे, लेकिन बाद में अकेले ही रहे। और एक सुंदर आसन पर उसको बैठाया और उसके चरणों में बैठकर परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर अपनी वाणी से उसका स्वागत सत्कार किया। और फिर प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान की कृपा से आप यहाँ पर पधारे हैं, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परमम गुरु। हे योगियों के भी परम गुरु, मैं आपको मनुष्य की परम सिद्धि के बारे में प्रश्न पूछता हूँ। पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इस संसार में मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यम् उसको क्या सुनना चाहिए, अथ जाप्यम् किसके नाम का जप करना चाहिए, यत् कर्तव्यम् रुभिः प्रभु और उसका कर्तव्य क्या है, स्मर्तव्यम् भजनीयम् यद्वा उसको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और ब्रूही यद्वा विपर्यय और क्या नहीं करना चाहिए। एक ही श्लोक में परीक्षित महाराज सब प्रश्न पूछ लेते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को इस संसार में क्या श्रवण करना चाहिए, किसके नाम का जप करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अथ श्रोतव्यम यत् जाप्यम यत् कर्तव्यम रुभि प्रभु, स्मर्तव्यम भजनीयम यद्वा विपर्यय। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए। सबसे पहले तो परीक्षित जी के प्रश्न की प्रशंसा करते, वरियान एष ते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न ही बहुत सुंदर है। और हकीकत में कविराज गोस्वामी लिख रहे कि भगवान कृष्ण की कृपा के बिना किसी भी जीव के अंदर अध्यात्म के बारे में प्रश्न करने की, अध्यात्म के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट नहीं हो सकती है, और नहीं भगवान कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी काशी में मिले तो वहाँ पर महाप्रभु के साथ कई दिन तक रहे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी के पास एक भूतानी कंबल था जो अपने कंधे पर रखे थे और महाप्रभु बार बार उसके सामने देखते थे, उस कंबल के सामने। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि कुछ तो है, तो तुरंत ही गए वहाँ से गंगा तट पर। और गंगा जी के तट पर वहाँ पे एक गौड़ीय कोई भक्त थे, तो उसको ये भूतानी कंबल अपना नया दे दिया और उसके पास से पुराना कंथा लेकर कंधे पर डालकर आ गए फिर। और जब महाप्रभु ने देखा तो सनातन गोस्वामी को पूर्ण वैराग्य युक्त देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा केला, कहते प्रसन्न हैया। सनातन गोस्वामी को उस पुराने कंथे के साथ देखकर प्रसन्न हो गए एकदम, क्योंकि महाप्रभु का स्वभाव है कि महाप्रभु र भक्त गणे वैराग्य प्रधान ताहा देखी चित है गौर भगवान। भक्तों के अंदर जब वैराग्य देखते हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, और आज सनातन गोस्वामी के अंदर वैराग्य देखकर तारे प्रसन्न हैया प्रभु एकदम प्रसन्न हो गए और उसके ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? तब कहते तार कृपाय प्रश्न करी ते तार शक्ति हेल। महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी के अंदर प्रश्न करने की शक्ति आ गई। अन्यथा कई दिनों से सनातन गोस्वामी महाप्रभु के साथ थे लेकिन आज तक ऐसा प्रश्न करने की जिज्ञासा उसके अंदर प्रकट नहीं हुई, लेकिन आज महाप्रभु ने कृपा की। कहते कि तार कृपाए प्रश्न करीते तार शक्ति है। महाप्रभु की कृपा से प्रश्न करने की सनातन गोस्वामी के अंदर शक्ति प्रकट हो गई। जैसे कहते कि पूर्वे ये थे राय पासे प्रभु प्रश्न केल। पहले जैसे गोदावरी नदी के तट पर महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो वहाँ गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से मुलाकात हुई, और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कई प्रश्न पूछे। तो उस प्रसंग को याद कर रहे कि पूर्वे ये छे राय पासे प्रभु प्रश्न केल और तार शक्ति रामानंद तार उत्तर दिला। लेकिन रामानंद राय ने जवाब क्यों दिया? तो कहते कि तार शक्ति, महाप्रभु की शक्ति से, महाप्रभु की कृपा से रामानंद राय ने उसके प्रश्नों के जवाब दिए। तो ऐसे यहाँ प्रभु प्रश्न, प्रभु शक्ति प्रश्न करे सनातन, ऐसे यहाँ पर महाप्रभु की शक्ति से सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे और आपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण, और महाप्रभु खुद तत्व का निरूपण करते हैं। अर्थात दोनों प्रसंग बताए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रामानंद राय ने प्रश्नों का जवाब दिया। तो कहने का भाव कि भगवान की कृपा के बिना किसी भी जीव के अंदर ऐसे सुंदर प्रश्न करने की जिज्ञासा न तो प्रकट हो सकती और न ही उसका कोई उत्तर दे सकता है। और परीक्षित महाराज का तो क्या कहना, जो जन्म से ही भगवान कृष्ण की कृपा पात्र थे। हमारे यहाँ पे ध्रुव महाराज के बारे में कहते कि सबसे छोटी उम्र में ध्रुव महाराज ने भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन जब परीक्षित महाराज के बारे में विचार किया जाए तो ध्रुव महाराज ने तो 5 साल की उम्र में भगवान का साक्षात्कार किया था, लेकिन परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, और ध्रुव जी को भगवान उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन कितने समय तक, जब तक उसने स्तुति की 5-10-15 मिनट, लेकिन परीक्षित महाराज के सामने 9 महीने तक भगवान अपने रूप से प्रकट रहे गर्भ में। और उतना ही नहीं, जब गर्भ से बाहर आए और जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसने भगवान की गोद में आंखें खोली और भगवान कृष्ण का मुख देखा। क्योंकि गर्भ के अंदर तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा की थी, लेकिन जैसे जन्म हुआ गर्भ से बाहर आए तो उस ब्रह्मास्त्र के तेज से फिर उसकी, उस बालक की मृत्यु हो गई। और तब भगवान ने उस बालक को अपने हाथ में लिया और अपनी गोद में लेकर अपनी कृपा दृष्टि से उस पांडव वंश के बीज समान उस बालक को फिर से भगवान ने जीवित कर दिया। तो जैसे ही आँख खोली तो क्या देखते, परीक्षित महाराज उस बालक भगवान कृष्ण का मुख देखते हैं। इससे बड़ी भगवान की कृपा पात्र क्या हो सकते हैं कि जन्म के साथ, जन्म से पहले भी भगवान के दर्शन किए और जन्म के साथ भी कृष्ण के दर्शन किए, तो उसके ऊपर तो भगवान की पूर्ण कृपा थी ही, इसीलिए ऐसे सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। और जवाब देने वाले सुखदेव जी के ऊपर भी, उसको भी ऐसे ही गर्भ से जब बाहर नहीं आ रहे थे, अपनी माता वाटिका व्यास जी की पत्नी 12 वर्ष तक घर में रहने के बाद भी सुखदेव जी अपनी माँ के घर से बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि अंदर बैठे हुए सोच रहे थे कि यहाँ पर बैठकर आराम से भजन हो रहा है तो फिर बाहर जाएंगे तो भगवान की माया पकड़ लेगी, और फिर एक बार उसने पकड़ लिया संसार की माया ने तो फिर भजन होगा नहीं, तो यहाँ भजन बन रहा है तो फिर क्यों बाहर निकलना। लेकिन व्यास जी एक दिन समाधि में अपने पुत्र से बात करते हैं कि पुत्र अब तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं बाहर तब आऊंगा जब भगवान वचन देंगे कि बाहर आने के बाद मुझे उसकी माया स्पर्श नहीं करेगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें संसार की माया स्पर्श नहीं करेगी। नहीं ऐसे नहीं, आप कह दो ऐसे नहीं, जिसकी माया है वह आकर कहे तब मैं बाहर आऊंगा। तो उस समय भगवान द्वारिका में लीला कर रहे थे, व्यास जी गए और सब समाचार सुनाया, तब भगवान कृष्ण आए और कहा कि पुत्र शुक, आप बाहर आ जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। और इसलिए सुखदेव जी का एक नाम हुआ ब्रह्मराज, साक्षात परब्रह्म ने अपनी माया से उसकी रक्षा की, इसलिए सुखदेव जी का क्या नाम हुआ, ब्रह्मराज, विष्णुराज और ब्रह्मराज। एक की भगवान कृष्ण ने परीक्षित जी की रक्षा की, इसलिए उसका नाम हुआ विष्णुराज, और ब्रह्मराज दोनों के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा थी, इसलिए ऐसे सुंदर प्रश्न किए और अब ब्रह्मराज इस सुंदर प्रश्न के जवाब देंगे। परीक्षित जी का ऐसा सुंदर प्रश्न सुनकर सुखदेव जी कहते कि वरियान एष ते प्रश्न कृतो लोक हितम रूप, हे राजन तुमने समस्त लोक के मंगल के लिए ऐसा सुंदर प्रश्न कहा है। आत्मविद सम्मत पुंसाम, आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं, जो जानते हैं कि आत्म तत्व क्या है, शरीर और आत्मा के भेद को जो जानते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति तुमने जैसे प्रश्न किया ऐसे ही प्रश्न को सुनते हैं, ऐसे ही प्रश्न को कहते हैं और ऐसे ही प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं। और जो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेदी नाम, जो गृहमेदी है, जो आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते उसके लिए तो नुणाम संति सहस्त्रश, हजारों हजारों प्रकार की संसार भर की बातें करते रहेंगे, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न गृहमेदी लोग नहीं सुनेंगे। शायद दो शब्द सुनते रहते हैं, एक गृहस्थ और एक गृहमेदी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दोनों का अर्थ समझाया है कि गृहस्थ किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार सबके साथ रहते हैं, लेकिन सबके साथ रहने पर भी अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं कि यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उसका लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करना, यह मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानते हैं और जानकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को गृहस्थ कहते हैं। अर्थात गृह में रहते हुए भी जो भजन भक्ति में लगे हुए हैं ऐसे लोगों को गृहस्थ कहते हैं। और गृह में दी तो कहते कि जो अपने परिवार पत्नी पुत्र इत्यादि के साथ रहते हैं लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ जानते नहीं है, हमें यह मनुष्य शरीर क्यों मिला इसको मालूम नहीं है, बस खाना पीना घूमना फिरना सोना, यही जिसने जीवन का लक्ष्य मान लिया है और यही करने में दिन रात लगे हुए हैं। निंद्र या हियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी कहते कि जो पूरी रात्रि निंद्रा में पसार कर देते हैं और दिवाच व्यर्थ कर्म भी और दिन पूरा संसार भर के व्यर्थ कार्य करने में अपना दिन गवा देते हैं, ऐसे लोग गृह मेदी है। गृह मेदी का एक अर्थ होता है कि ईर्ष्यालु लोग, मेदी का अर्थ है ईर्ष्या। हम देखते हैं कि गृहस्थ लोगों में प्रायः अपने आसपास के लोगों में ईर्ष्या रहती है। किसी व्यक्ति के पास संपन्नता ज्यादा हो जाए, समृद्धि ज्यादा हो जाए, सुख सगवर ज्यादा हो जाए तो उसको देखकर जलते रहते, ईर्ष्या करते रहते, तो इसीलिए भी इसको गृह मेधी कहते हैं। तो कहते कि राजन जो गृह मेधी लोग हैं वे लोग तो ऐसी चर्चा नहीं करेंगे और नहीं सुनेंगे, लेकिन जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, आत्मविद सम्मत तुम्हारा प्रश्न है वो आत्मज्ञानी व्यक्ति इसका बहुत प्रशंसा करेंगे और ऐसे प्रश्न से ही कृतो लोक हितम संसार भर का मंगल होता है। और परीक्षित जी का प्रश्न इतना सुंदर था कि क्या कहे, सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करना भूल गए। सीधी कथा, पहले तो परीक्षित जी के प्रश्न की प्रशंसा की और फिर उत्तर देना चालू कर दिया। पहले द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में से यह प्रारंभ होता है सुखदेव जी का प्रवचन, और चौथे अध्याय में मंगलाचरण करेंगे, तब तक तो याद ही नहीं आया, ऐसा सुंदर प्रश्न। और अब उसके प्रश्न का जवाब देते हुए कहते कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य पूज्य तीर्थता भयम। तस्माद अर्थात किस लिए, किस लिए? तो कहते कि हे राजन, आपने प्रश्न किया था कि संसार में मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो संसार में जितने भी लोग हैं वह सब मरणासन्न है। अर्थात हे राजन, यह प्रश्न तुम्हारे अकेले का नहीं है, संसार भर के जीवों के लिए है, इसलिए यह सबको लागू होता है। इसलिए कहते कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य पूज्य चेच्छता भयम। हे राजन, जो समस्त जीवों के आत्मा है, सर्वात्मा जो भगवान है, षडेश्वर्य पूर्ण है, जो ईश्वर है अर्थात समस्त संसार के कंट्रोलर है, और जो हरि है अपने भक्तों के दुख को हरण करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रोतव्य, कथा को सुनना, कीर्तितव्य उसके नाम रूप गुण का कीर्तन करना, और पूज्य और उसकी पूजा करना, इच्छताम अभयम, मृत्यु के भय से मुक्त होना है उस जीव के लिए, बस यही कर्तव्य है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य पूज्य चेच्छता भयम्। बस मरणासन्न व्यक्ति को यही कर्तव्य है। अब जो नहीं मरने वाले है उसके लिए अलग बात है, लेकिन सुखदेव जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिसकी मृत्यु इस संसार में होने वाली है उसके लिए इसके सिवा और कुछ भी करने लायक नहीं है, और है तो भी इससे कोई सरल और श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। और यही ऐसे ही प्रश्न जो परीक्षित जी ने पूछे, ऐसे ही प्रश्न नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी से भी पूछे थे, और तब सूत जी ने भी यही जवाब दिया था, सेम यही। वहां पर भी कहते कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। हे ऋषियों, मनुष्य मात्र का एक ही कर्तव्य है, एकेन मनसा एकाग्र मन से भगवान सात्वताम पति, जो भगवान अपने भक्तों के पति है, भक्तों के स्वामी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यस्त नित्यदा। वहां पे शुद्ध एक शब्द इसे ज्यादा कहते हैं, नित्यदा, नित्य एक दो दिन की बात नहीं, नित्य यही करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कथा सुनना, उसके नाम का कीर्तन करना, उसका ध्यान करना और उसकी पूजा करना। और यहाँ पर सुखदेव जी भी यही प्रश्न कर रहे हैं। तब परीक्षित महाराज बाहर से प्रकट तो नहीं कह रहे, लेकिन मन में उसके ऐसा भाव उठ रहा है, हे गुरुदेव अगर कोई ऐसा साधन आपने ये तीन बात कही उसमें से भी अगर एक ही हो सके ऐसा हो तो वह क्या करना चाहिए, एक ही कोई चीज कर सके और सब मिल जाए ऐसा भी कोई है। और तब उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन एक समय की बात है कि संसार भर के जितने भी ऋषि मुनि हैं, संसार भर के जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, उन सब की एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई अर्थात सभा हुई, और उस ऋषि मुनियों की और योगियों की सभा में प्रश्न था कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है, जीव मात्र के कल्याण का सर्वोच्च साधन कौन सा है। तो साधुओं की सभा में तो यही ऐसी ही चर्चा रहती है क्योंकि उसके अंदर दया ही भरी रहती है। तो कहते कि बहुत चर्चा चली और उसके बाद उस योगियों की सभा में जो निर्णय हुआ था, हे राजन वह मैं आपको सुना रहा हूं। कहते कि एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम्, श्लोक आपके सामने है भागवत 2:1-11। एतन निर्विद्य, निर्विद्य अर्थात जिसको संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, अथवा इच्छताम अथवा तो संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है। निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम्, अथवा तो मृत्यु के भय से मुक्त होना है, कोई भी इच्छा किसी के अंदर है। तो कहते कि योगी नाम रूप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, उस योगियों की सभा में उस ऋषि मुनियों की सभा में यही निर्णय हुआ था कि मनुष्य मात्र के जीव मात्र के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो वह है हरेर नामानुकीर्तनम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो सुखदेव जी कहते कि हे राजन मेरे अकेले का यह मत नहीं है, संसार भर के जितने भी बड़े बड़े महात्मा है, जितने भी योगी है, उन सबका निर्णय है। कहते कि योगी नाम रूप निर्णीतम, योगियों का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, मेरा तो है ही, लेकिन समस्त योगी ऋषि मुनियों का निर्णय है कि हरेर नामानुकीर्तनम, हरिनाम का संकीर्तन ही जीवों के मंगल का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जितने भी महापुरुष है उन सबका, सुखदेव जी का भी यही निर्णय है, लेकिन क्या कहे फिर भी आजकल के लोग कहते हैं कि कीर्तन प्राइमरी साधन है। कीर्तन कौन सा साधन है? प्राथमिक साधन है, और तब जो अज्ञानी लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, उसके लिए कीर्तन जरूरी है, ज्ञानियों के लिए यह साधन नहीं है। ज्ञानियों के लिए नहीं है, तब बड़े बड़े ज्ञानी जो है वो क्यों कीर्तन करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे हनुमान जी जिसके बारे में कहा है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्री राधा जी धारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी के बारे में आया है अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी नहीं ज्ञानियों में भी जो अग्रगणी है, और मनोजवम मारुत तुल्य बुद्धिमताम वरिष्ठम, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी जो वरिष्ठ अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। और कितने बड़े बुद्धिमान, एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं कि जब भगवान रामचंद्र और रावण का युद्ध चल रहा था तो अनेक प्रयास करने पर भी वह दुष्ट रावण मर नहीं रहा था, भगवान बहुत प्रयास कर रहे थे, कई दिन युद्ध हो गया लेकिन रावण मर नहीं रहा था। और तब विभीषण कहते हैं कि प्रभु जब तक आपके पूर्वज रघु महाराज का वह बाण नहीं हमारे पास होगा तब तक कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन यह दुष्ट मरेगा नहीं। क्योंकि रावण सूर्य वंश को निर्मूल करने के प्रयास बहुत कर चुका था, और उसका भी इतिहास है कि एक सूर्यवंश के राजा थे, नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन उसके साथ युद्ध करते समय रावण को ऐसा लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तब धोखे से उसकी पीठ पर वार करके उसको मार दिया। और उस राजा ने, सूर्यवंश के राजा ने उस समय रावण को शाप दिया था कि दुर्बुद्धि, तूने युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर धोखे से मुझे मारा है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, मेरे ही वंश में प्रकट होने वाला कोई तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझे मारेगा। तो तब से रावण जान गया था कि सूर्यवंशी के हाथ से ही मेरी मृत्यु है, इसलिए बारंबार प्रयास कर रहा था सूर्यवंश को निर्मूल करने के लिए। और रघु महाराज का जब शासन था तो शक्ति से तो रावण जानता था कि मैं उसके साथ लड़ नहीं सकूंगा, लेकिन रघु महाराज कुछ कार्य से बाहर गए थे और रावण रघु महाराज का रूप लेकर उसके महल में आया। लेकिन जैसे ही महल में आया और कोई तो नहीं पहचान सके, उसके रघु महाराज समझकर उसको सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन रघु महाराज की जो पत्नियां थी उसका पातिव्रत्य का बल इतना था कि जिसके सामने रावण की माया टिक नहीं सकी, और वो सब पहचान गई और रावण तुरंत ही वहां से भाग गया। और बाद में जब रघु महाराज घर पर आए और उसको सब समाचार मिला तो एकदम क्रोधित हो गए, और रावण को मारने के लिए उसने अपना धनुष हाथ में लेकर उसके ऊपर तीर बाण चढ़ा लिया। वो थे अपने राज्य में और रावण अपनी लंका में थे, लेकिन वहां से मारने के लिए उसने अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, और उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और कहते हैं कि महाराज, आपके इस बाण से रावण की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि रावण की मृत्यु मैंने आप ही के वंश में आगे चलकर भगवान प्रकट होंगे और उसके हाथ से मैंने रावण की मृत्यु लिखी है, इसलिए अगर आप यह बाण चलाएंगे तो उससे रावण की मृत्यु नहीं होगी, आपका बाण व्यर्थ हो जाएगा, और रावण की मृत्यु हो गई तो मेरा विधान व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप, क्योंकि उसको भी भरोसा था ब्रह्मा जी को कि रघु महाराज के बाण से मेरे लेश भी मिट सकते हैं, तो दोनों बात उसके सामने रख रहे कि शायद मर भी गया तो मेरा विधान मिथ्या हो जाएगा। तब रघु महाराज कहते हैं कि पितामह, आप जानते हैं कि हम सूर्यवंशियों के धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य को पूर्ण किए बिना वापस नहीं आ सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आप अपने इस बाण को मुझे दे दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि रावण की मृत्यु जब भी होगी आपके इसी बाण से होगी। और इतना कहकर ब्रह्मा जी रघु महाराज से उस बाण को लेकर चले गए ब्रह्मलोक में। और बाद में रावण को इस बात का पता लग गया, रावण को इस बात की जानकारी हो गई कि मुझे मारने वाला बाण ब्रह्मा जी के पास है, तो रावण ने तुरंत ही तपस्या प्रारंभ कर दी और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसके पास से वरदान के रूप में उस बाण को मांग लिया। इसलिए लोग कहते हैं ना कि रावण ने अपने काल को मुट्ठी में कर लिया था, कुछ काल बाल को मुट्ठी में नहीं किया था, वो बाण उसके हाथ में आ गया था जिससे उसकी मृत्यु थी। और फिर अपने राजमहल में जाकर रावण ने जो महल का खंभ होता है ना, बिंब, उसके अंदर उसको चुन लिया बाण को सब ओर से सीमेंट से। और इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। विभीषण कहते कि प्रभु, वह बाण जो रघु महाराज आपके पूर्वज का है, वह बाण लंका में है इतना मैं जानता हूँ, लेकिन लंका में कहाँ पर है वो कोई नहीं जानता है। दो ही लोग जानते हैं कि वह बाण कहाँ पर है, एक तो रावण स्वयं जानता है और एक उसकी पत्नी मंदोदरी जानती है। तब हनुमान जी कहते, विभीषण जी पक्का है ना मंदोदरी जानती है? हाँ, तब ठीक है, तब तो हम लेकर आएंगे उस बाण को। तुरंत ही हनुमान जी वहां से गए और मंदोदरी के महल के आसपास एक भिक्षुक ब्रह्मचारी 10-12 साल के ब्रह्मचारी का रूप लेकर वहां पर जाकर लंकेश की जय हो, दशानन रावण की जय हो, त्रिलोक विजय की जय हो कहते हुए घूमने लगे। जैसे ही मंदोदरी ने आवाज सुनी, जब से सीता को रावण हरण करके लाया है तब से लेकर आज पहली बार मंदोदरी ने सुना है कि रावण की जय हो। आज तक किसी ने कहा नहीं है कि रावण की विजय होगी, हम सब राम जी की जय कहते हैं। तो मंदोदरी बाहर आई और कहते हैं कि ब्राह्मण देव, क्या बात है, आज तक किसी ने नहीं कहा है मेरे पति और राम जी के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें आज तक किसी ने नहीं कहा है कि मेरे पति की विजय होगी, लेकिन आज आप बारंबार कह रहे हैं कि मेरे पति की जय होगी, क्या बात है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं कि देवी, क्योंकि मैं जानता हूं कि राम लाख प्रयास कर ले लेकिन आपके पति को मार नहीं सकेंगे, जब तक वह बाण जिसके हाथों से जिस बाण से आपके पति की मृत्यु लिखी है वह जब तक राम के हाथ में नहीं आएगा तब तक लाख प्रयास कर लेने पर भी आपके पति की मृत्यु नहीं होगी, आपके पति की ही विजय होगी। तब मंदोदरी को भी समझ में आया कि अरे मैं तो यह बात भूल गई, व्यर्थ में शोक कर रही थी क्योंकि वह बाण तो उसके हाथ में आने वाला नहीं है। तब कहते कि ब्राह्मण देव आपने बहुत बड़ा उपकार किया, मैं तो व्यर्थ में ही चिंता के सागर में डूबी जा रही थी, अरे वह बाण तो मेरे पति ने इस खंभे में चुन लिया है और हम दोनों के सिवा किसी को मालूम नहीं है। और जैसे ही मंदोदरी बोली हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और एक मुक्का से उस खंभ को नष्ट कर दिया और बाण लेकर सीधे भगवान के पास आए और कहा कि लीजिए प्रभु, और उसी बाण से रावण की मृत्यु हो गई। इतने बड़े बुद्धिमान, इतनी हनुमान जी जब लंका में गए जब सीता जी की खोज के लिए, तो भगवान ने सभी दिशाओं में बंदर भेजे थे लेकिन अपनी मुद्रिका थी वो हनुमान जी को दी सीता जी की पहचान के लिए, क्योंकि जानते थे कि यही कार्य हनुमान जी ही कार्य करेंगे, सीता जी के पास पहुंचेंगे। और जानते क्या थे, उसी ने उसके पास कार्य कराया कि भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं और किस भक्त को यश देना वो वही जानते हैं। जैसे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये सब राका बेड़ा छोड़, युद्ध करना चालू कर क्योंकि इन सभी को मैंने पहले से ही मारा हुआ है, तू तो मात्र निमित्त बन, यशो लभस्व, यश प्राप्त कर, मैं तुझे यश देना चाहता हूँ, नहीं तो ये सब तो मेरी दृष्टि से ही मर गए हैं। जैसे यहाँ पर भगवान क्या तो क्या करना है उसका जानते ही है सब, लेकिन हनुमान जी को यश देना चाहते इसलिए उस मुद्रिका को हनुमान जी को ही दिया। और हनुमान जी जब गए तो फिर समुद्र किनारे से हनुमान जी ने छलांग लगाई, तब प्रश्न होता है कि हनुमान जी ने उस अंगूठी को कहाँ पर रखी थी। हनुमान जी ने पैंट तो पहनी नहीं थी कि कोई पॉकेट में रख दे, या उसके पास पर्स नहीं था, तो उस अंगूठी को रखा कहाँ पर। जब हनुमान जी लंका को जलाकर वापस आ गए तब उसी के सब साथी सब बंदर पूछते हैं कि हनुमान जी आप जब गए तो आपने आपको प्रभु ने मुद्रिका दी थी, तो आपने इस मुद्रिका को कहाँ पर रखा था। हनुमान जी कहते मुख में रखा था। अरे राम राम, इतनी पवित्र भगवान की मुद्रिका को आपने मुख में रखकर झूठा किया, तो क्या करता, अरे पूछ के साथ बांध सकते थे, अपनी उंगली में पहन सकते थे, अपने लंगूट के साथ बांध सकते थे, मुख में थोड़ा मुख में क्यों रखा। तब हनुमान जी कहते हैं कि बंदरों, उस मुद्रिका के अंदर राम नाम अंकित था और राम नाम व्यक्ति के मुंह में ही शोभा देता है, अलग और कहीं जगह पर, और इसलिए मुंह में रखी मैंने उस मुद्रिका को। तो कहने का इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी लेकिन क्या करते हैं, बस दिन रात नाम संकीर्तन के सिवा उसका कोई कार्य ही नहीं है। यहाँ तक लिखा है कि हनुमान जी जब प्रेम में मग्न होकर हम कीर्तन करते हैं, यद रोम कूपे ध्वनि मूल संतम, एक एक रोम से हनुमान जी की आवाज आती है, यद रोम कूपम ध्वनिमूल संतम, श्री राम जय जय राम, एक एक रोम से आवाज आती है, एक श्री राम जय जय राम। और हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं तो उस के साथ न तो कोई मृदंग बजाने वाले रहते हैं, न कोई करताल वाले रहते हैं, न कोई हारमोनियम वाले रहते हैं, बस अकेले ही खुद ही गाते हैं और मस्ती में नाचते हैं। और एक बार जब सीता जी ने देख लिया हनुमान जी को ऐसे ही अकेले प्रेम में कीर्तन में नाचते हुए देखा, तो सीता जी ने एक बहुत बड़ा सुवर्ण का घंट बनवाया और घंट बनाकर हनुमान जी की पूछ में बांध दिया, ताकि हनुमान जी जब नाचते हुए कीर्तन करे तो वह घंट ताल में बजता रहे, उसमें ताल कूदता रहे। आज भी आप दक्षिण भारत में गए हो तो मालूम होगा कि दक्षिण भारत में कई हनुमान जी के बड़े बड़े विग्रह है, सुचेतम वहां पे शायद हनुमान जी का बहुत बड़ा विग्रह है, सुतिंद्रम, और उस हनुमान जी के विग्रह के पूछ में घंट बंधा हुआ है। हमारे वृंदावन में श्रीरंगम मंदिर है और श्रीरंगम मंदिर में जो हनुमान जी है उसके पूछ में भी घंट बंधा हुआ है। दक्षिण भारत के कई मंदिर में ऐसा है, और वह घंट जो सीता जी ने हनुमान जी की पूछ में बांधा था वो कितना बड़ा था, एक तो सुवर्ण सोने का था और दूसरा वजन कितना था, तो कहते कि आज के माप तोल के अनुसार उस घंट का वजन था 60 लाख टन। और इतना बड़ा घंट हनुमान जी की पूछ के साथ एक घुंघरू के समान दिखता था, क्योंकि उसका शरीर कनक भूधराकार शरीरा, सुमेरु पर्वत जैसा विशाल हनुमान जी का शरीर है। और लिखा है कि जब हनुमान जी अपना विराट शरीर प्रकट करते हैं तो मेरु मंद्राचल विंध्याचल इत्यादि सब हनुमान जी की एड़ी के नीचे रह जाते हैं। और इतना बड़ा जिसका स्वरूप है और उसके पूछ में वो घंट, तो घुंघरू जैसा ही दिखेगा ना। तो कहना कि इतने बड़े ज्ञानी होकर भी निरंतर अकेले में नाम संकीर्तन करते हुए नाचते हैं, इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? नारद जी। नारद जी का काम ही एक है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, निरंतर राधा रमण नारायण नारायण करते हुए घूमते। हम ड्रामा में नाटक में भी देखते हैं कि जब नारायण नारायण आवाज सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए एक नारद जी की एंट्री हो रही है, उसका कार्य ही वही है। तो इतने बड़े ज्ञानी भगवान शंकर जो अपने 5 मुख से निरंतर महामंत्र का जप करते हैं, शिव जी का एक नाम है पंचानंद क्योंकि 5 मुख है उसके, उसके पुत्र का नाम है षडानंद, कार्तिकेय जी को 6 मुख है और शिव जी के पिताजी को 4 मुख है, इसलिए उसको चतुरानंद कहते हैं। ब्रह्मा जी तत्व से नहीं लेकिन लीला दृष्टि से तो भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी से शिव जी का प्रागत्य हुआ, तो चतुरानंद पंचानन और षडानन। तो 5 मुख से शिव जी निरंतर महामंत्र का जप करते हैं। और एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे एकदम शांत स्वरूप में, और जी पार्वती जी उसके पास गई और कहा कि हे प्रभु, ये कलयुग के जीव कितने दुर्भाग्यशाली है, दिन रात इसकी मति पाप में लगी हुई है और मुझे नहीं दिखता है कि इस पाप के फल के स्वरूप करोड़ों करोड़ों जन्म तक ये लोग नरक की यातना से मुक्त हो पाएंगे। तो हे नाथ, इस कलयुगी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आप कुछ ऐसा सरल और श्रेष्ठ साधन बताइए ताकि यह सब जीव भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके, इस पाप रूपी समुद्र को पार कर सके, जन्म मृत्यु के चक्र से उसका बंधन टूट सके, ऐसा कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। और तब भगवान शंकर ब्रह्म यामल नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर बात बताते हैं, कहते कि हे देवी, हरि विना नास्ति किंचित पाप निस्तारक कलो। हे देवी, सबसे पहली बात तो सुन लो कि हरि नाम के सिवा इस कलयुग के जीवों को पाप से कोई उबार नहीं सकता है। हरिम विना नास्ति किंचित पाप निस्तारको कलो, हरि नाम के सिवा कलयुग के जीव को कोई भी इस पाप से निस्तार नहीं करा सकता, पार नहीं करा सकता है। इसलिए तस्मात लोकोद्धारणार्थम हरिनाम प्रकाशयत। इसलिए हे देवी, संसार भर के जीवों के उद्धार के लिए लोक उद्धारणार्थम, समस्त लोक के उद्धार के लिए हरिनाम प्रकाशयत, अर्थात हरिनाम कैसे लेना चाहिए वह विधि में बता रहा हूँ। पहले तो कह दिया कि हरिनाम के सिवा कलयुग के जीवों का कोई निस्तार नहीं कर सकते, और इसलिए हरिनाम कैसे लेना चाहिए यह विधि मैं तुम्हें प्रकाशित, तुम्हारे सामने प्रकाशित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात कलो युगे, जिसके फल स्वरूप कलयुग में लोग सर्वत्र, अर्थात कोई भी स्थान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे भारत से बाहर अमेरिका कहीं पर भी हो, सर्वत्र उसके बल से महापापात कलो लोको मुच्यते, बड़े से बड़े पाप से लोग तर जाएंगे। और अब कहते हैं कि सुनो उस विधि, हरिनाम की विधि के कैसे लेना चाहिए। तब कहते हैं कि हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, जिस मंत्र में सबसे पहले हरे कृष्ण यह पद द्वंद्वम अर्थात दो बार है, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति च पद द्वयम, और उसके बाद कृष्ण यह पद दो बार है, कृष्णेति च पद द्वयम, और तथा हरे पद द्वंद्वम, और उसके बाद हरे यह शब्द द्वंद्वम अर्थात दो बार है, अर्थात क्या हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस बस। आप लोग तो त्रिकाल ज्ञानी है, भगवान शंकर ने पीछे का तो बताया ही नहीं, आप सब ऐसे ही जान गए, हरे राम वाला पद तो अभी उसने कहा ही नहीं। और तब कहते कि उसके बाद दूसरी लाइन बता रहे, हरे राम इति द्वयम्, उसके बाद हरे राम इति द्वयम् अर्थात दो बार हरे राम, तद अंते च महादेवी, अर्थात पार्वती जी को संबोधन करते हुए कहते कि हे महादेवी, तद अंते उसके बाद में राम राम द्वयम् वदेत, राम राम दो बार बोलना चाहिए, और हरे हरे ततो गृहात, और अंत में फिर से हरे हरे, अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में भगवान शंकर अपने मुंह से कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए पार्वती जी के प्रश्न पर यह महामंत्र जपने का उपदेश दे रहे और कह रहे कि महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकम इति, कलयुग में यही इसी को महामंत्र कहा है, महामंत्रम च कृष्णस्य, यह कृष्ण नाम रूपी महामंत्र सर्व पाप प्रणाशकम इति, इसे जीव मात्र के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब शिव जी जिसके लिए ज्ञान के देवता बताया है शिव को, और वह कह रहे हैं हरिनाम जप की विधि बता रहे, फिर भी कलयुगी जीव कह रहे कि यह प्राइमरी साधन है। और सभी बात जाने दीजिए, अध्यात्म में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सब क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इसके सिवा और कुछ बात। जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में लगे हैं, जो त्यागी लोग हैं वह वैराग्य प्राप्त करने के प्रयास में लगे हैं, और जो भक्त है वो भक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगे हैं, और सभी लोग इन तीनों चीज, अध्यात्म में इन तीन को बात करके और कुछ है ही नहीं, इन तीनों के पीछे इन तीन ही को प्राप्त करने के में लगे हुए हैं। और हम सब में भी यह इच्छा है ना कि हम लोगों को थोड़ा ज्ञान मिल जाए, जीवन में थोड़ा वैराग्य आ जाए, थोड़ी भक्ति मिल जाए, लेकिन यह ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों क्या कर रहे हैं? तब कहते हैं कि ये तीनों खुद कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन यह तीनों भी कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए संसार भर के लोग दौड़ रहे हैं। और प्रमाण के साथ है, पद्म पुराण में लिखा है कि जब नारद जी यमुना जी के तट से निकले और श्रीधाम वृंदावन में से जब जा रहे थे, तो वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी, जिस स्थान को आज ज्ञान गुदड़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उद्धव जी महाराज अपनी ज्ञान की गुड्डी को लेकर अर्थात ज्ञान के पोटले को लेकर गए थे और गोपियों ने उस ज्ञान के पोटले को फाड़ कर यमुना जी में बहा दिया, इसलिए उस स्थान का नाम ही है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव की ज्ञान रूपी गुदड़ी को फाड़ कर फेंक दिया। उसी स्थान की नारद जी ने देखा कि एक स्त्री अर्थात भक्ति महारानी अत्यंत दुख में विलाप कर रही थी और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध होकर उसकी गोद में मूर्छित होकर सोए हुए थे और नारद जी वहां पर गए। भक्ति महारानी ने अपना सब दुख उसको नारद जी के चरणों में निवेदन किया। तब नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। हम कहते हैं कि नारद जी ने चारों वेदों के पाठ किए उसके कान में, 17 पुराणों का पाठ किया, कई उपनिषद, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी प्रयास करते करते थक गए और तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, इस ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए और भक्ति का दुख दूर करने के लिए आप सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म से ही इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी और भक्ति महारानी प्रसन्न होगी। और तब सत्कर्म क्या यह पूछने के लिए नारद जी सर्वत्र वितरण किए, लेकिन कहीं पर से उसका जवाब नहीं मिला। तो अंत में नारद जी बद्रिक आश्रम गए और जैसे ही बद्रिक आश्रम में पहुंचे तो वहां पर उसने देखा कि सनत कुमार, चतुष कुमार आकाश मार्ग से आ रहे थे। वो बद्रिक आश्रम सत्संग के लिए आए थे और नारद जी से ही उसकी मुलाकात हुई। पतंग नारद जी से कहते सनत कुमार के, नारद जी जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति का कुछ लूट गया हो और जैसे व्याकुल हो, ऐसे आप क्यों भाग रहे हैं? आपको तो कुछ चिंता है नहीं। तब नारद जी ने सब जो घटना हुई थी वह बताई और कहा कि यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आकाशवाणी ने कौन सा सत्कर्म करने के लिए कहा, इसलिए मैं तपस्या करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। और तब सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, आकाशवाणी ने आपको जिस सत्कर्म करने के लिए कहा है वह है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। उसी से ही भक्ति महारानी प्रसन्न होगी और ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि होगी, इसलिए आप भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए। और तब नारद जी ने हरिद्वार में आनंद कानन क्षेत्र में गंगा जी के तट पर भागवत सप्ताह का आयोजन किया और उसमें वक्ता के रूप में उसी चारों भाइयों को बिठा दिया। चार व्यासपीठ बनाकर चारों भाइयों को बिठा दिया और बहुत बड़ा पंडाल में बहुत विस्तार से वर्णन है। भागवत महात्म्य में एक कथा है कि संसार के जब सभी देवता, सभी ऋषि मुनि और सब लोग, सभी तीर्थ भी मूर्तिमान होकर वहां पर आकर बैठे थे। और ऐसा भी लिखा है कि कोई कोई ऋषि मुनि तपस्या में लगे थे और अपनी तपस्या के गर्व में वो लोग भागवत सप्ताह सुनने के लिए नहीं आ रहे थे। तब भृगु ऋषि वहां पर जाकर उसको समझा कर लेकर आए और कथा में बैठाया और पूरा पंडाल खचोखच भर गया। और तब सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया और सबसे पहले भागवत की महात्म्य कथा प्रारंभ की। और जैसे ही भागवत महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया उस सनत कुमारों ने, तब तक उस कथा पंडाल में बैठे हुए सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने देखा कि एक अद्भुत घटना हुई कि उस पंडाल के बीच में सहसा अचानक भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई। जो भक्ति महारानी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में अपने पुत्रों के साथ दुखी थी और नारद जी ने वेदों का घोष किया, पुराणों का पाठ किया, फिर भी जिसकी मूर्छा दूर नहीं हुई वह ज्ञान वैराग्य और भक्ति उससे 150 किलोमीटर दूर हरिद्वार में भागवत कथा, अभी तो कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, उसके महात्म के शब्दों को सुनकर एकदम पुष्ट हो गए और कहते भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। सहसा अर्थात अचानक भक्ति महारानी उस पंडाल में प्रकट हुई और कैसे, भक्ति सुतो तो वह सुत अपने पुत्रों को, कौन जो वृंदावन में मूर्छित पड़े थे उस पुत्रों को साथ में लेकर, और कैसे थे, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, वो दोनों ज्ञान और वैराग्य एकदम तरुण अर्थात नवयुवक बन गए थे। भागवत महात्मा के शब्द कान में जाते ही उसकी मूर्छा दूर हो गई और उसका वृद्धत्व भी दूर हो गया, और तीनों एकदम प्रसन्न होकर कथा पंडाल में आकर नाचने लगे। और क्या कह रहे थे नाचते नाचते, तो कहते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे ती नामानी मुहुर वदंती मुहुर वदंती। बारंबार भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के मुख से एक ही शब्द निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे ती नामानी मुहुर वदंती। बारंबार तीनों एक ही नाम उच्चारण कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए तीनों नाच रहे थे, और ये किसने देखा, उस पंडाल में बैठे हुए लाखों लाखों लोगों ने अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष देखा कि जिस ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे वो तो हरिनाम संकीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। अब भक्ति महारानी कीर्तन में नाचे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि भक्ति का तो स्वभाव ही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को भी कीर्तन में नाचते हुए आज लोगों ने प्रत्यक्ष देख लिया। लेकिन फिर भी उस ज्ञान और वैराग्य की को प्राप्त करने में चक्कर में लगे हुए लोग कहते हैं कि यह तो प्राइमरी साधन है, उसका क्या करें। पर कहते कि कलयुग में ऐसे दंभी लोग होंगे, पाखंडी लोग, जो ज्ञान और वैराग्य के नाम से कीर्तन का विरोध करेंगे, और ऐसे लोगों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाने के लिए, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। लोगों को कीर्तन की महिमा सुनाने के लिए, और महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से लोगों को कीर्तन करके, कीर्तन में नाच कर दिखाया कि कलि काले युग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग का यही धर्म है कि कृष्ण नाम संकीर्तन, इसके सिवा कलयुग में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और महाप्रभु खुद तो कीर्तन करते ही थे, इतना ही नहीं, लेकिन अपने भक्तों अपने पार्षदों को भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे, जाओ और जाकर लोगों के पास से भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगे, कृष्ण नाम की भिक्षा मांगो। और तब महाप्रभु के आदेश से एक दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों गए गांव में भिक्षा मांगने के लिए। हर रोज जाते थे और किसी घर पर जाकर, उस द्वार पर जाकर जब आवाज करते थे तो गृहस्थ लोग दौड़कर बाहर आते थे, और जब सन्यासी के रूप में दोनों को देखते थे तो लोगों में साधुओं में तो स्वभाव की निष्ठा रहती है, तो सन्यासियों को देखकर अपने घर में जाकर जो भी कुछ हो भिक्षा देने के लिए, कोई अन्न लेकर आते थे, कोई फल लेकर आते थे, कोई दूध लेकर आते थे, जो भी घर में वो लेकर आते थे और उसके सामने रखते थे। और तब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हम यह भिक्षा नहीं लेते हैं, इस भिक्षा को लेने, अन्न फ्रूट इत्यादि इस भिक्षा को लेने के लिए नहीं आए थे। तब कौन सी भिक्षा लेंगे, हम तो प्रभु के आदेश से दूसरी कुछ भिक्षा लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं। तो कहते प्रभु राज्ञाय भाई मांगी एई भिक्षा, प्रभु राज्ञाय भाई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। कहते कि प्रभु की आज्ञा से हम आपसे भिक्षा मांगने आए, क्या, तो कि बस हमको भिक्षा में यही दीजिए कि आप लोग कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए और परस्पर कृष्ण की चर्चा कीजिए, बस यही मांगने आए हैं। और तो कहते कि क्यों भाई, हम क्यों कृष्ण का भजन करें, कृष्ण का नाम ले, कृष्ण के बारे में चर्चा करें। तब कहते कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन दान, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम।
हमको
यह भिक्षा चाहिए, प्रभु के आदेश से आप लोग के पास हम यह भिक्षा लेने आए हैं कि आप लोग कृष्ण का नाम लो, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। बस सभी धर्मों का सार आ गया कि संसार के जीवों के ऊपर दया रखो और निरंतर कृष्ण का नाम लो। तो जितने भी महापुरुष आपको यहाँ पे बताए, सभी का एक ही मत है कि कृष्ण का नाम ही समस्त धर्मों का सार है। चैतन्य महाप्रभु का तो मत है ही, साथ में सुखदेव जी का मत है, शिव जी का मत है, हनुमान जी सब। और यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि इतने ही नहीं, संसार भर के जितने योगी है हे राजन, सभी का निर्णय है कि योगी नाम रूप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपको कोई ऐसे पाखंडी मिल जाए कि नाम संकीर्तन करना ये प्राइमरी साधन है, तो उससे दूर ही रहना, उसके पास मत जाना। तो बस यही बात को जानते हुए आप सभी भक्तों से यही आशा है कि आप लोग महामंत्र का प्रेम से जप कीजिए और ऐसे ही। लेकिन महामंत्र का जप करने के लिए श्रवण नहीं करेंगे तब तक कीर्तन में रुचि प्रकट नहीं होगी। इसलिए बस ऐसे ही यहाँ पर आकर कथा सुनते रहिए और महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्णा हरे।